SBS हिंदी।
तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है SBS हिंदी पर।
नमस्कार, धन्यवाद।
डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं जो नरेंद्र मोदी का दोबारा आना है सत्ता में, उसका भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर क्या असर हो सकता है?
हाँ, देखिए, ऐसा है कि इसकी जानकारी हम ले सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और अब फिर से बने हैं, तो पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में और क्या पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की। तो सबसे अच्छा तो ये सबसे अच्छी खबर दी थी कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में ऑस्ट्रेलिया आए थे और वो पहले प्रधानमंत्री थे 28 सालों के बाद जो कि ऑस्ट्रेलिया आए। और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल भी इंडिया गए 2017 में, और उन लोगों ने कुछ अपने आप को पार्टनरशिप में ढालने की कोशिश की और एक वक्तव्य जारी किया, इसमें पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक था। लेकिन ये सब होने के बाद भी थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है वो मैं सोचता हूँ कि ठंडा सा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सभी क्षेत्रों में कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है इस अभी। तो उसका कारण हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या है और क्या होने वाला है आगे। मैं अब जैसे अभी यहाँ भी प्रधानमंत्री नया इलेक्शन हुआ है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन फिर से अपने पद पर वापस आए हैं, तो उन्होंने वक्तव्य दिया है कि उनके लिए साउथ पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उसको उन्होंने इंडो पैसिफिक से भी जोड़ा है उस टर्म से। और नरेंद्र मोदी जी भी अब प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो उन्होंने बिम्स्टेक कंट्रीज जो भारत के आसपास के जो कंट्री हैं उसमें साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया कंट्रीज हैं उनको बुलाया है शपथ ग्रहण में। तो हमसे इससे ये क्लैरिटी होती है कि अभी तुरंत दोनों प्रधानमंत्रियों के जहन में सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज क्या हैं तो उस पर वो ध्यान देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक प्राथमिकता है और उभर कर सामने आई है। और ये ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट कमीशन किया था
जी।
और उस रिपोर्ट को लिखने वाले थे पीटर वार्गीज, जो कि मतलब भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर भी रहे हुए हैं और यहाँ के फॉरेन अफेयर्स के हेड भी थे और अभी चांसलर हैं क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के। तो उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी लास्ट ईयर, उसका नाम था इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेटजी इन 2035। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी कि क्या 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 ऑस्ट्रेलिया कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो संबंध है किस क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है, लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसकी स्ट्रैटेजी मुझे कोई बहुत साफ दिख नहीं रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जहन में ये बात जरूर है कि इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एशियन कंट्री सामने उभर कर आ रहा है और आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से ये बहुत जरूरी है कि इंडिया को प्रायोरिटी दी जाए।
जैसा कि आपने कहा और बहुत सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार दिखता रहा है, चाहे टर्नबुल की जो भारत यात्रा थी उससे हो या उसके बाद जितनी भी कोशिशें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही हुई हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 28 साल बाद आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे
जी।
पर ये जो सवाल है, ऐसा क्यों है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए उस तरह से प्राथमिकता में नहीं है? इसकी एक मिसाल मुझे याद है कि जब टर्नबुल गए थे उसके बाद, बल्कि वो नाराज़ लौटे थे, मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो नाराज़ लौटे क्योंकि भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट पर उस तरह का सहयोग नहीं दिया।
जी जी, तो नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और इसका मैं कारण आप कुछ और भी कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। अभी जैसे पिछले वर्ष जो G20 की समिट हुई थी उस G20 की समिट में, ब्यूनस एरिस में हुआ था समिट दिसंबर 2018 में, तो इस G20 की समिट में एक जापान अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप उभर कर सामने आया, जिसकी की एक्रोनिम बनती है जय, JAI, जय का मतलब में हिंदी में मतलब विक्ट्री, या उसकी विजय भी होती है इंग्लिश में विक्ट्री। तो इस जय में जो जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया है वो पार्टनरशिप की बात इंडिया ने स्वीकार करी, लेकिन एक मालाबार एक्सरसाइज पहले होती थी और अभी भी हो रही है, लेकिन उस मालाबार एक्सरसाइज में उसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर वगैरह कंट्रीज थे। लेकिन अभी जो पिछले साल जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आने से मना कर दिया। क्योंकि उस थ्री कंट्रीज में मतलब जापान, अमेरिका और इंडिया में हुआ। तो ये है। फिर एक और बहुत बड़ा फ्रेमवर्क सामने उभर कर आया था और आ रहा है, उसको क्वाड। तो उस क्वाड में चार कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अभी जो है ये क्वाड की जो प्रोग्रेस वो बहुत स्लो है, क्योंकि इंडिया समहाउ कन्विंस नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान और अमेरिका के साथ मिलकर एक चौतरफा या चतुर्मुखी कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो उसका कारण ये है कि इंडिया जो है चाइना को लेकर के बहुत डिफरेंट थिंकिंग है, ऑस्ट्रेलिया चाइना और इंडिया चाइना की थिंकिंग डिफरेंट है, और जो US का रोल, यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है ऑस्ट्रेलिया में, और यूनाइटेड स्टेट्स को जिस तरीके से भारत देखता है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये जो है मैं कहूँगा कि थोड़ा तालमेल जो है वो पूरा नहीं बैठता है जापान भारत में और ऑस्ट्रेलिया में, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल पार्टनरशिप ये तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो उसका इफेक्ट जो है इंडिया की दृष्टिकोण जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा डिफरेंट है, और चाइना का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डिफरेंट है।
जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन ये जानकारी देने के लिए।
नहीं, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। एंड
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।